conference center at Temple Square.
Salt Lake Center ke Temple Square ke conference center se 177 general conference hai. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ki. जवान व्यक्तियों का जनरल अथॉरिटीज और गिरजे के जनरल ऑफिसरों में से चुना गया है और संगीत मोमेंट टैबरनेकल क्वायर द्वारा दिया जाएगा. दुनिया भर से सदस्य और ऑफिसर गिरजे के नेताओं से शिष्य पाने के लिए आए हैं.
This broadcast is furnished.
इस ब्रॉडकास्ट को Bonneville Communication एक पब्लिक सेवा के रूप में दे रहा है. बिना इजाजत के रिकॉर्डिंग कॉपी और दूसरे इस्तेमाल मना है. Without written consent is prohibited.
S. Monson, first counselor in the first presidency.
Thomas S. Monson, जो गिरजे के पहली प्रेसिडेंसी में पहले काउंसलर है, वो इस सेशन को कंडक्ट करेंगे.
We welcome you to the first general session.
हम आपको इस Church of Jesus Christ of Latter-day Saints की 177 general conference के पहले सेशन में स्वागत करते हैं. प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकली जो इस कॉन्फ्रेंस के प्रधान है, उन्होंने मुझे ब्रदर मॉनसून को इस सेशन को कंडक्ट करने के बोला है. हम इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और असेंबली हॉल में उपस्थित जनरल अथॉरिटीज का अभिनंदन करते हैं और रिलीज सोसाइटी, नव युवकों, युवतियों, संडे स्कूल और प्राइमरी जनरल प्रेसिडेंसीज का भी अभिनंदन करते हैं. हम सरकार, शिक्षा और सिविक लीडरों का खास स्वागत करते हैं. हम टेलीविजन, रेडियो स्टेशनों, सैटेलाइट और केबल सिस्टम के मालिकों और काम करने वालों को धन्यवाद देते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को दुनिया भर पहुंचाने के लिए एक पब्लिक सेवा कर रहे हैं. हम खुशी से कहते हैं कि इस कार्यक्रम को इंटरनेट द्वारा lds.org पर दिया जाएगा. इस सेशन के लिए संगीत टैबरनेकल क्वायर द्वारा दिया जाएगा. क्रेग जोसेफ और मैक वुलबर्ग के निर्देशन में क्लेय क्रिस्टेंसन ऑर्गन बजाएंगे. क्वायर ने इस सेशन को शुरू किया ग्लोरी टू गॉड ऑन हाई गाकर और वो अब गाएंगे स्वीट आवर प्रेयर. प्रार्थना के फिर एल्डर रॉबर्ट एफ ओर्टन ऑफ जो 70 पर प्रार्थना करेंगे.
This be as my Father's Our Father who art in heaven.
हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं.
Hallowed be thy name.
आपके नाम की जय हो.
We recognize thee as the donor of all that is just and right.
हम आपको इस दुनिया के अंदर सभी सही सच चीजों को देने वाले को मानते हैं. और आपको ये भी मानते हैं जो कि आप हमारे मसीह हैं और ये यीशु मसीह का गिरजा है. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकले के लिए, और हमारा आभार दिखाते हैं उनकी आज उपस्थिति के लिए. हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो आज भाग लेंगे, जो आज संगीत या एक व्याख्या देंगे, ताकि हम आपको बता सके हैं आत्मा के द्वारा. उन लोगों को आशीर्वाद दीजिए जो मिलिट्री के अंदर अपने देश की सेवा कर रहे हैं. उनके साथ में रहकर उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें निर्देशन दिखाइए ताकि उन्हें सुरक्षा की जगह मिले. पिता, हम इस दुनिया में रहते हैं और हम हर तरह के प्रलोभन हमारे सामने हैं. हमें कृपया प्रलोभन से दूर ले जाइए और पक्का बनाइए ताकि वो आपकी इच्छा पूरी हो. हम धन्यवाद देते हैं आपको गॉस्पल के विस्तारण के यीशु मसीह गॉस्पल का हमारे दिनों में. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे अच्छे जीने से यीशु मसीह इस गिरजे के कामों को अपने हाथ से कर सके हैं. ये हम कहते हैं, हम आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में. आमेन.
President Hinckley has
President
asked
Hinckley ne mujhe general authorities area 70s aur general auxiliary presidencies ko sustaining vote ke liye prastut karne ko bola hai. Brother Robert W. Cantwell, jo Gilje ki auditing ki managing director hai, phir Gilje ki auditing department report mein se padhenge. Unke baad Brother F. Michael Watson, jo pehli presidency ke secretary hai, aur 2006 ke Gilje ki statistical report ko prastut karenge. Choir of the 12 Apostles se Elder Richard G. Scott phir humse bolenge. Unke baad choir phir gaayenge. Put your shoulder to the wheel.
As I now present to you the authorities, may we all participate not only with our uplifted hand, but with our pledged heart. It is proposed that we sustain Gordon Bittner Hinckley as prophet, seer,
and prophet of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Gordon Bittner Hinckley, Prophet C. Revelator, Thomas Spencer Monson, President of First Presidency, Pela Counselor, James Ezra Faust, Co-Dusra Counselor, Ke Roop Me, First Presidency Me, Prestit Ke Jo Chate, Hath Utaye, Jo Nahi Chate, Ho Hath Uta Sakte Hai.
It is proposed that we sustain
ये प्रस्तुत किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को कोरम ऑफ द 12 को अपोस्टलों के प्रेसिडेंट, पोएट केनेथ पैकर को उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट और कोरम के इन सदस्यों को सस्टेन करें. पोएट के पैकर, एल टॉम पेरी, रसल एम नेल्सन, डैलन हेज ओक्स, एम रसल बैलेट, जोसेफ बी वुडलैंड, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Irene, Dieter F. Uchtdorp, and David A. Bednar. Jo chahte hain, wo haath uthaiye. Koi nahi chahte hain. Je prestesky a ďatáhy, ký ham peli prezidenci, ký kancelu o 12 apostolo, ko profetov sír o lebletor, ko rúbme sa stejn kere. Čo čáte, to ha tu tajie. Čo nej čáte, ho by ja tu tajte tehe. Je prestesky a ďatáhy, ký ham in 70s, ko area 70s, ko se release kere. D. Allen Henderson, C. Alma Black, Ildefonso de Castro Díaz, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos F. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paulo Grau, Beaver T. Ho Ching, Emmanuel A. Kissy, Eric W. Kapishka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendenes, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shamway, Joseph W. Satati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Taylor, Robert B. White, John W. Yardley. Jo inhe dhanyavad dena chahte hai to ho haath uthaiye. Ye prastut kiya jata hai ki hum new members ke first quorum of the 70s mein sustain kare. Enrique R. Falabella, Eric W. Kapishka, Michael J. Taylor, Octaviano Tenorio, aur Claudio D. Javik. Jo chahte hai to haath uthaiye. Jo nahi chahte hai. It is proposed that we sustain the following. Prastut kiya jata hai ki hum nay new area 70s ko sustain kare. Richard K. Ahaji, Ruben V. Alejo, Clemato C. A. Almeida, Sergio M. Anaya, Wilford M. Anderson, Fernando J. D. Arugio, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astroga, Hector Avila, Marvel T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cossay, Robert E. Chambers, Yun Juan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Fukiger, Yovencio A. Wansion, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Garrett C. Hill, Frederick C. Hisiane, David H. Ingram, Tetsuji Ishihi, Kapumba T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Mellon, Peter F. Mears, Benson E. Michalucha, Enrique J. Montoya, K. Brad Natras, Russell T. Astu, Himalaya Orsono, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spetale, Nate C. Tobias, Frank B. Trithal, Terence M. Benson, Daniela B. Wakalo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Jo chahte hai, wo haath uthaiye. Jo nahi chahte hai, wo bhi haath utha sakte hain. Ye prastut kiya jata hai ki hum in sabko dhanyawad dekar release karon. Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes, Ann Clark Pingree, as Relief Society General Presidency said. Hum Relief Society General Board ko member ko bhi release karte hain. It is also proposed that we release Julie Bangor Beck, Julie B. Beck aur Elaine Dalton ke counselor ke roop mein se bhi release kare. All who wish to join us jo expressing appreciation dhanyawad ke roop mein in sabhi ko release karna chahte hain to mere haath uthaiye. Je prostit, keď zatajkám Julie Bangeter Beck, ke nej General Relief Society prezidentské rúbme, Sylvia Hendricks Allred, ke jese pele kancela, or Barbara Thompson, ke dúsre kancela ke rúbme prostit, ke jo čáte háte tajie, koji nej čáte, to obi háte tajie.
It is also proposed that we
suspend prostit kiya jata hai ki hum Elaine Schwartz Dalton ke pehle councillor ke roop mein young woman general presidency mein aur Mary Nelson Cook second councillor ke roop mein young woman general presidency mein sustain kare jo hath jo nahi chahte to abhi hath uthaiye ye prastut kiya jata hai ki hum general authorities area 70s aur general auxiliary presidencies ko unke roop mein sustain kare jo chahte hain to hath uthaiye jo nahi chahte to abhi hath uthaiye ye lagta hai ki sustaining puri tarah se hui hai भाइयों बहनों आपकी प्रार्थनाओं और विश्वास के लिए धन्यवाद आप हम चाहते हैं कि न्यूली नई जनरल अथॉरिटीज रिलीज सारी प्रेजिडेंसी काउंसलर्स और यंग वुमेन के प्रेजिडेंसी और काउंसलर आप अपने जगह पर आए
To the first presidency
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka
dear brethren
jaise DNC ke section 120 mein kaha gaya hai ki council on the disposition of the tithes girje ke paiso ko kharch karne ki izazat deta hai
authorizes the expenditure of church funds
is council mein first presidency quorum of the 12 apostle presiding bishopric hai
and the presiding bishopric.
वो गिरजे के डिपार्टमेंटों और कामों के लिए बजटों को हाँ करते हैं काउंसिल से इजाजत मिलने के बाद गिरजे के डिपार्टमेंटों बजटों के अनुसार पैसे देते हैं और गिरजे के नियमों का अनुसार गिरजे के ऑडिटिंग डिपार्टमेंट को उन सब हिसाबों को और सिस्टमों को दिया गया है ताकि वो पैसे के पाने खर्चे के ऊपर पकड़ पा सके गिरजे का ऑडिटिंग डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट से स्वतंत्र है
The church auditing department is independent of all other church departments and operations.
उसके स्टाफ में certified public accountant, certified internal auditors, certified information system auditors, और दूसरे license पाइलॉग है. ऑडिटों के करने के बाद गिरजे का ऑडिटर डिपार्टमेंट कहता है कि सभी पैसे के कामों में पाए दान खर्च पैसे और गिरजे के दान को 2005 के लिए 2006 के लिए गिरजे ठीक है और उन्हें अकाउंटिंग के रीतियों के द्वारा बजटों और गिरजे के नियमों द्वारा किया गया है सम्मान से दिया गया चर्च ऑडिटिंग डिपार्टमेंट रॉबर्ट डब्ल्यू कैंटवो मैनेजिंग डायरेक्टर
Brothers and sisters,
भाई और बहनों, पहली प्रेसिडेंसी ने गिरजे की प्रगति और स्थिति दिसंबर 31, 2006 तक की रिपोर्ट को लिखा है. चर्च यूनिट्स, गिरजे के यूनिट, नंबर ऑफ स्टेक्स 2,745, मिशन्स 344, डिस्ट्रिक्ट्स 630, वार्ड्स एंड ब्रांचेस 27,475. Gilje ki sadasyata. Total membership 12,868,606. Increase in children of record during 2006, 94,006. Converts baptized during 2006, 272,845. Number of full-time missionaries, 53,164.
Two temples were dedicated
Sacramento, California, or Helsinki, Finland.
Two temples rededicated
Huete, Santiago, Chile, Papeete, Tahiti.
The total number of temples currently in operation,
124.
Prominent members who have passed away since last year, Elder DeVere, former member of the 70.
Elder Spencer H. Osborne, former member of the 70.
Sister Alicia Young Rogers Woodland,
wife of Elder Joseph B. Woodland.
Sister Norma Ashton.
Widow of Elder Marvin J. Ashton, former member of the Quorum of the 12 Apostles. Sister Dorothy Porter Hall, former counselor in the Young Women General Presidency.
This conference began.
ये कॉन्फ्रेंस मॉर्वन टैबरनाकल क्वायर के बेहतरीन और भावुक गाने स्पीडा और प्रेयर से शुरू हुई. उसके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि प्रार्थना रक्षा और सहायता की स्रोत है जो हमारे स्वर्गीय पिता से आती है. वो स्वर्गीय उपहार है जिसे स्वर्गीय पिता ने हर आत्मा को दिया है. उसके बारे में सोचो. वो स्वर्गीय व्यक्ति जो है जो सब जानता है, सब देखता है, तुमको और मुझे कहता है कि हम जितने भी चाहे छोटे हैं उनसे बात करें एक पिता के रूप में. वो सच में जानता है कि तुम्हें हमें कितनी ज़रूरत है उससे निर्देशन की. उसने कहा है, Thou shalt pray vocally as in thy heart, yea, before the world as well as in secret, in public as well as in private. हमारे चाहे भी कोई भी स्थितियाँ हों, चाहे हम विनम्र हों या अहंकारी हों, गरीब या अमीर हों, स्वतंत्र या बंदी हों, ज्ञानी हों, ज्ञानी हों, प्यार किए पाए हुए हों, हमें उनसे बात करनी है. हम उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट जरूरत है. उससे छोटा हो सकता है पर उसमें हमें अपने प्यार और आभार को दिखाना है और मदद को मांगनी है. उन्होंने कई दुनियाओं को बनाया है पर मैं तुमको यहाँ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी बात का जवाब देगा. हम स्वर्गीय पिता से के नाम में यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना सबसे असरदार होती है जब हम कोशिश करते हैं कि हमारे इरादे अच्छे रहे हैं. नम्र विनम्र प्रार्थना निर्देशन लाती है. भावनाओं को ढंग से बताने के बारे में चिंता मत करो. समझते पिता है, तुम उनके कीमती बेटे हो जिससे वो प्यार करता है और मदद करना चाहता है. जैसे तुम प्रार्थना करते हो, स्वर्गीय पिता देखता है कि वो पास में है और वो सुन रहा है. बेहतर प्रार्थना का एक तरीका है कि सही प्रश्नों को पूछा जाए. जिन चीजों को तुम चाहते हो उन चीजों के बजाय ये सोचो कि पिता क्या मांगता है तुमसे. जैसे तुम उसकी इच्छा को करना चाहोगे तो व्यर्थ प्रार्थना तुम्हें निर्देशन देगी. कभी तुम्हें अपने पिता से दूरी महसूस हो तो वो कोई कारणों की वजह से होती है. पर चाहे कोई भी कारण हो, जैसे तुम मदद को मांगोगे वह तुम्हें निर्देशन देगा जिससे तुम्हारे विश्वास को वापस विस्थापित किया जाएगा. प्रार्थना तब भी करो जब तुम्हारी को प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है. कभी कभार एक बच्चे की तरह तुम गलती कर सकते हो और तुम अपने पिता के पास जा नहीं सकते. उस समय तुम्हें प्रार्थना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. कभी भी अपने आप को प्रार्थना करने के लिए लायक मत, ना लायक मत समझो. क्या हम सच में समझते हैं कि प्रार्थना की सबसे पूरी शक्ति क्या है? फिर हम अपने पिता के ऊपर के पास में विनम्र रूप से देखेंगे और उनके ऊपर बिल्कुल निर्भर होंगे हैं और फिर प्रार्थना करेंगे उतने समय के लिए जितना ज़रूरी है. मैंने वो किया है. मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ था जिसमें मुझे काफ़ी दुख आया है. वो मेरे आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से या कुछ, पर वो एक संबंध की वजह से हुई थी. कुछ समय से मेरे दिल के अंदर मैंने काफ़ी प्रार्थना करी. जैसे मैंने कोशिश करी है, मैंने उसके लिए कोई भी सुझाव नहीं पाया. तो मैंने स्वर्गीय पिता से पूछा कि मैं कैसे जानूं और विश्वास पूरा पाऊं. मैं वो किसी को रास्ते को देख नहीं सकता था जो मुझे शांति देगी, जो मेरा अक्सर आशीर्वाद होता है. जब मैं सोने गया और मैं जब उठा उसके बाद, तो मैं बिल्कुल शांति महसूस करी. फिर मैं घुटनों पर जाकर प्रार्थना करके पूछा, ये कैसे हुआ? मेरे दिल में मैं जानता था कि वो जवाब उनका प्यार था और उनके लिए उनकी कंसर्न. वो अच्छी प्रार्थना का शक्ति है. मैंने प्रार्थना के बारे में कही जा रहा है. प्रेसिडेंट हिंकली को प्रार्थना करते हैं हमारी मीटिंगों में. तुम भी उनके सारे जान सकते हो. प्रार्थना को जिन्होंने कंक्लूजन किया था अक्टूबर 2001 की कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपने दिल से प्रार्थना करी, एक लिखे हुए कागज में से नहीं. उस प्रार्थना को पढ़ो और फिर तुम ये जानोगे कि उसके अंदर कोई भी फालतू में बारह बार नहीं बोला जा सकता है ताकि दूसरों को कोई. वो सरल शब्दों को लेते हैं और उन्हें साफ साफ बोलते हैं. विनम्र प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि स्वर्गीय पिता उनसे प्यार करते हैं और विश्वास से उन्हें बोलते हैं और जानते हैं कि उसका जवाब वो आएगा जब उसे चाहते हैं. हर प्रार्थना को एक लक्ष्य के लिए बनाया गया है. उनकी प्रार्थनाएं उन हीरे मोतियों की तरह होती हैं, एक चुपचाप गवाही उस रूप की जिसमें जो प्रार्थना ने हमारे जिंदगी में कई सालों से रहा है. कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें एक कुछ काम के साथ में मदद चाहिए होती है, तो स्वर्गीय पिता हमें कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा और विश्वास से काम करना पड़ेगा. कभी कभार वह कदम कदम का काम होता है जिससे हमें उसके बाद में प्रेरित जवाब मिलते हैं. कभी कभार तुम इस पूरा जवाब एक साथ पा लेते हो. वो कभी एक छोटे भाग में आएगा, कभी कभार वो धीरे धीरे बढ़ता है. जैसे विश्वास के साथ तुम हर हिस्से को पाते हो, तुम्हें दूसरे हिस्सों की तरफ ले जाया जाएगा ताकि तुम्हें पूरा जवाब मिल सके. चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, उसके वजह से तुम्हें अपनी खुद की प्रगति होगी. वो हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है और फिर उनके जवाब देगा. पर उनके जवाब तुम्हारे सामने आए होंगे, चाहे कभी तुम जब तो घुटने पे होंगे, चाहे तुम जरूरत मांगते हो, पर वो तुम्हें उन शांति के समयों में आत्मा को भेजा गया ताकि तुम्हारे दिल और दिमाग को छुआ जा सके. इस तरह से वो तरीका तुम्हारे दिमाग के ऊपर बढ़ेगा. तुम्हारा चरित्र बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बढ़ेगा और तुम शक्तिमान बढ़ोगे और इससे एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे। बहुत मुश्किल काम होता है कि प्रार्थना करो जो तुम किसी को बहुत जरूरी जरूरत से चाहते हो, वो उससे समझना बहुत मुश्किल होता है कि तुम्हारे विश्वास की वजह से और आगे पालन जीवन की वजह से नतीजा फिर भी क्यों नहीं आता है। मसीह ने सिखाया है, whatsoever ye ask the Father in my name, it shall be given unto you. That is expedient for you. कभी कभार हमें ये बहुत मुश्किल समय आता है कि हमारे लिए एक्सपीडियंट क्या है, वो लंबे समय के ऊपर आ सकता है। तुम्हारा जीवन आसान होगा जब तुम ये जानोगे कि भगवान तुम्हारे अनंत खुशी को चाहता है। तुम्हें प्रार्थनाओं के अंदर जवाब को ढूंढने के लिए कहा जाता है। तुम्हें अपने से दिमाग में पहने के सोचने के बारे में बताया जाता है। तुम कई बार उस हल के बारे में सोचोगे कि जानो कि सही जवाब क्या है और वो आएगा। कभी कभार वो प्रार्थना से आएगा, कभी वो प्रार्थना से और या कभी पवित्र आत्मा के या कभी दूसरे के लोगों से आएगा। Oliver Cowdery को ये निर्देशन गया प्रार्थना के बारे में। Behold, you suppose I have given unto you when you took no thought, save it for asked me. You must study it in your mind. Then ask me if it be right. If it is right, your bosom shall burn. Therefore, you shall feel that it is right. जवाब एक भावना के रूप में आता है, उसके बाद में फिर विश्वास बढ़ता है। मसीह ने दो तरीके बताए हैं। I will tell you in the mind and in your heart and by the Holy Ghost. दिमाग और दिल को जो संदेश आते हैं वो पवित्र आत्मा के आते हैं। मेरे लिए जो दिमाग के लिए जवाब है वो छुने हुए शब्द हुए की तरह होता है, पर वो दिल के लिए जो जवाब होता है वो भावना की तरह होता है। जैसे और प्रार्थना करो, फिर भगवान ने और समझाया है, but if what you propose be not right for you, shall have a stupor of thought. वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्ट वाली भावना है। ओलिवर काउडरी को सिखाया गया था जिस तरह से चाहे हुए जवाब आए, उन्होंने क्या शांति को नहीं माना अपने दिमाग में? पर शांति के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है कि आपको बयान मिले। जब भी मुझे लगता है कोई मुसीबत आती है तो मैं उसे विश्वास के कामों से ढूंढता हूँ, उसके बाद में शांति आती है और मेरे सारी मुसीबतें धीरे धीरे करके चली जाती हैं, जैसे भगवान ने वादा किया है। प्रार्थना के बारे में कुछ गलत फहमियों को ठीक किया जाता है कि स्क्रिप्चर प्रार्थनाओं को बताते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि प्रार्थना से कब जवाब आएगा। पर उनका जवाब तीन तरीकों से आ सकता है। पहला, तुम शांति को पा सकते हो और ये कि तुम्हारा निर्णय सही है। दूसरा, ये तुम जानोगे कि तुम्हारे दिल में जो भावना है वो ठीक नहीं है, कि तुम्हारा जो निर्णय है वो गलत है। और तीसरा, और ये सबसे मुश्किल है, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब तुम वही करते हो, जब तुमने ध्यान से प्रार्थना और तैयारी करी है और लंबे समय तक उसके लिए इंतजार किया है और उसके बावजूद तुम्हें कोई उसका जवाब नहीं मिलता है, तुम्हें धन्यवाद देने की इच्छा होगी, पर उसके लिए भगवान में बहुत विश्वास की जरूरत होती है। तुम्हें अपने जीवन को उस समय लायकता से जीना जरूरी है और तुम्हारे चुनावों को मसीही सीखों के अनुसार होना चाहिए। जैसे तुम आत्मा को सुनोगे, दो चीजें होंगी, या तुम्हारे दिमाग में वो सोचने वाली बात आएगी कि तुमने एक गलत निर्णय किया है, या तुम्हारे दिल में शांति आएगी कि तुम्हारी जो निर्णय था वो सही था। अगर तुम ढंग से जीवन रह रहे हो और तुमने विश्वास से निर्णय किया है, भगवान कभी भी तुम्हें कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुमने गलत निर्णय किया है। प्रार्थना का एक और जरूरी भाग आभार है। जब भी हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं और जिनके अनंत आशीर्वाद जिसमें आते हैं, मेरे दिलों और दिमाग में धन्यवाद से भर जाते हैं। क्या हमें हमेशा हमारे प्यारे पिता से आभार देना चाहिए ताकि हमें उनके जवाब मिल सकें और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और हम उससे बढ़ सकें। मैं बयान देता हूँ कि हमारा पिता हमारे प्रार्थनाओं को हमेशा जवाब देगा उस रूप में और समय में जो हमारे अनंत अच्छाई के लिए सबसे बढ़िया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
We shall now be pleased to hear from elders.
Här bom kanske se 70 ke elders J. H. Jensen och John B. Dixon se sänenge jo 70 ka hai. Unke baad choir aur sabha fir gaenge. We thank thee, O God, for a prophet. Elder Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quorum of the 12 Apostles se hum se baatein bolenge. Uske baad choir gaenge, search, ponder, and all pray. Elder Jensen.
भजन गाने द्वारा कुछ महान उपदेश का प्रचार किया जाता है छोटे लड़के के रूप में जायन की भजन गाने द्वारा प्रस्तुत समाचार पर मेरे गवाही और पर बहुत प्रभाव पड़ा था मैं यूटा के एक छोटे शहर मलपटन में बड़ा हुआ था और वहां सभों में भाग लिया था पुराने सफेद गिरजाघर के नाम से जाना जाता था मेरे 95 वर्ष के बूढ़ी माँ अभी भी मलपित में रहते थे जब मैं पुराने सफेद गिरजा के गुजर करता हूँ और कई यादें में मन में आती हैं उनमें हमें भजन की भरपूर शक्ति जिन्हें हम प्रोहिती शनिवार पाठशाला और सैक्रमेंट में करते थे मेरे अनुभव प्रधानमंत्री हिंकली के अनुभव के समान है एक डिकन के रूप में वो कहा उन्होंने गाया प्रेज टू द मैन बड़े में करते मैं जिस पर यह प्रभाव पड़ा जो मुझे नहीं छोड़ा कि जोसेफ स्मिथ वास्तव में ईश्वर का भविष्यवक्ता थे मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कई संतों ने बार बार ये अनुभव किया है भजन पवित्र आत्मा के अमृत करते हैं भजन हमारी गिरजाघर सभाओं के एक अवश्य भाग है वो ईश्वर की पवित्रता आत्मा के अमृत करते हैं और वो हम संगीत द्वारा ईश्वर के करीब जाते हैं और प्रार्थना के अलावा दो प्रचारक पेरू में एक बूढ़े पत्नी पत्नी को उनके घर पर शिक्षा देते समय रुक जाते उनके पुत्र उसकी लड़की और तीन बच्चे आए एलरोन ने समझाया कि वे कौन है और वे क्या करते हैं पुत्र प्रचारक ने संदेह कर रहा था साथी के शांति प्रार्थना की स्वर्ग पिता हमें क्या करना है विचार आ गई उन्हें गाना गाया आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड पांच संदेशों के परिवार के दिलों में पवित्र आत्मा ने प्रभावित किया दो कॉन्वेंट्स के बजाय पूरे सात गिरजा में आ गए गिरजाघर शब्दों के खांसों में संगीत का आराधना ईश्वरी वचन और गवाही के स्वभाव के सरल बनाना चाहिए सैक्रमेंट के लिए बिशपरिक जिम्मेदार है संगीत चुनने के लिए वो जिम्मेदार है कि संगीत शब्द और आराधना और ईश्वरी वचन का समाधान करे संगीत का कला है प्रस्तुति बन जाता है और जब वो खुद के लिए ध्यान देते हैं कुछ वर्ष पहले मैं सभा में संगीत के लिए जिम्मेदार था जहां एक विशेष संगीत को नृत्य में दिशाया गया वो एक निराशा थी आराधना का स्वभाव कम हो गया था भजन ईश्वरी वचन अमृत करते हैं भजन से और भगवान लेते हैं जब 70 और फेस प्रेजेंसी और 12 चेले साथ मिलते हैं हमें याद दिला जाती है कि जल्द आएं और श्रद्धा और संगीत को सुने ऐसा करने से ईश्वरी वचन अमृत होता है और हम सभा के लिए तैयार होते हैं प्रधान पेका ने सिखलाया कि एक सदस्य जो अधैर्य से बजाता है वो संगीत भजन पुस्तक में से उसे हमारी भावना से नम्र करता है और उसे हमारी दिमाग में वो शब्द जाते हैं जो राज्य के सत्य में जिसमें सिखलाता है अगर हम सुने वो शब्द सुसमाचार सिखलाता है
A course in doctrine.
भजन अमृत करता है के भजन अपने साथ कन्वर्जन का स्वभाव रखता है वो त्याग देते हैं Thee, O God, for our prophet, Redeemer of Israel. और कई जो गायन है जो पुस्तपान को मजबूत करते हैं जैसे पिता और पुत्र का देवता मुक्ति के योजना ईश्वरी वचन अंतिम दिन की धर्मशास्त्र ईश्वर का इकट्ठा होना पवित्रता पुरोहित और धर्म दिया और वादा ये भजन के दीवाने पवित्रता आत्मा को अमृत करते हैं जिसे हम मणि प्रवर्तन करते हैं। कितने अपूर्ण और खाली भोज सभाएं होगी बिना अनुराधा के इस भजन के। सभी भजन में से पवित्र और है जो यीशु मसीह के रक्त निकलता और अंतिम प्रतिक्रिया उद्धारकर्ता के चुनना करने के शक्ति की मेरी शुरू की यादें प्रभु भोज से मिली है। ये वाक्य मेरे लिए वास्तव है। मैं पूरी तरह आश्चर्य हो उस प्यार के लिए जो यीशु हमें देता है। क्रिस्ट पर चढ़ाई हुई पूरी तरह वो अपहृत करते हैं। मेरे समझ भजन से जुड़ी है। ये चांद
रिडेम्पशन
ग्रैंड डिजाइन Where justice, love, and mercy meet in harmony divine. बच्चों को ही भजन सिखलाना घर से शुरू होता है। भजन गाना और उचित संगीत सुनना घर की शुरुआत होता है।
We hope the hymn book will take a prominent place among the scriptures and other religious books in our homes.
धर्मशास्त्र अन्य धार्मिक पुस्तकों पर स्थान लेती है। भजन परिवार के लिए सुंदरता और शांति का स्वभाव कहलाता है। अपने बच्चों को भजन से प्यार करना सिखाओ। विश्राम दिवस घरेलू पारिवारिक शाम सभा धर्मशास्त्र जब तुम काम करे तब तुम खेलते हुए जब तुम साथ में यात्रा करो भजन को लोरियों में रूप में गाइए ताकि हम छोटे बच्चों में विश्वास करें। पहला की ये सभाओं में समय पर कीजिए शांति लाइए। दूसरा सिरारपुर सभाओं से प्रवेश कीजिए ताकि सभा की संपत्ति के संगीत को स्वभाव उत्पन्न करना पड़े। तीसरा भजन गाइए। मैं देख सकता हूँ कि कुछ के पास भजन पुस्तकें हैं करते हैं लेकिन गाते नहीं। चौथा गीत को चुनो जो सही रहे। पांचवा पातों और कांस्कों में धर्मशास्त्र और सुसमाचार सच्चाओं पर जोर डालने के लिए और आखिरी में अपने घर पर भजन को कई बार सुनिए ताकि पवित्र आत्मा को आए तुम्हारे पास। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने जीवनों से किसी अनुचित संगीत निकाले और प्रथम के सलाह ले। भाइयों और बहनों हम भजन से इस्तेमाल करें ताकि अपनी सभाओं अपने घरों और अपने व्यक्ति जीवन में ईश्वर की पवित्र आत्मा को अमृत करें। हम उन्हें याद करें अपने सोच में विचार और गाएं। जानो सच्चा का गीत हमारे स्वर्ग पिता के प्रार्थना करना द्वारा है और उसका जवाब आशीष में मिलेगा। इन सच्चाइयों के मैं गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Good morning, brothers and sisters. इस सुबह मैं गिरजाघर के युवा को संबोधित करना करूंगा जिस तरह मैं अब और बहन परिवार के को करता हूं। हम जानते हैं कि तुम युवा की असाधारण पीढ़ी हो समाज और गिरजाघर में नेताओं बनोगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम सभी से प्यार करते हैं और उन्होंने हर एक को पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। उन्होंने क्योंकि योजना बनाई है खुशियों की योजना बनाई है जो कि अगर अपनाई जाए तुम उपस्थिति में जा सकोगे। जो प्रतिज्ञाएं तुम खुद से और ईश्वर से करते हो वो अति आवश्यक हैं।
And he shall bring it to pass.
हम सॉन्ग्स की पुस्तक में से सीखते हैं कि अपना जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित कर और वो तुम्हें मदद करेंगे.
The gospel of Jesus Christ has been restored in its fullness, and on the other, there is great turmoil, confusion, and wickedness.
इस दुनिया में जहां तुम जन्मे हो, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी. तुम्हें बहुत से अच्छे मौके प्रदान किए जाएंगे, लेकिन साथ में यहां खतरा भी है. अब समय है कि तुम ईश्वर से प्रतिज्ञा करो कि तुम्हें इस जीवन में क्या करना है और क्या बनना है. तुम्हारा माता पिता, लिविंग प्रॉफिट्स और स्क्रिप्चर्स के साथ साथ होली गोस्त तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम सही से गलत बता सको और अपने जीवन में उचित निर्णय ले सको. मैं आशा करता हूं कि तुम फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ पुस्तिका को ध्यान से पढ़ोगे और अपने साथ रखोगे अपने वॉलेट या पर्स में. अगर तुम पुस्तिका में लिखी हुई बातों को पढ़ोगे और अपनाओगे, तुम खुश रहोगे. मैं तुम्हें एक चर्च लीडर के बारे में बताता हूँ ताकि तुम समझ सको कि प्रतिज्ञा करना किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता है. जवान पुरुष के रूप में उसने निर्णय किया कि वो हमेशा वर्ड ऑफ विस्डम का पालन करेगा और शराब या तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेगा. उसे याद नहीं कि उसने ये निर्णय क्यों लिया, लेकिन उसने खुद से प्रतिज्ञा ली. बाद में कई बार उसे इन प्रतिज्ञाओं, इन पदार्थों के इस्तेमाल के लिए आमंत्रित किया गया, पर उसने कभी नहीं लिया. उसे इन पदार्थों के लेने या न लेने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि उसने ईश्वर से प्रतिज्ञा की हुई थी. स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो कि तुम भी कभी इन पदार्थों का सेवन नहीं करोगे और हमेशा वर्ड ऑफ विजडम का पालन करोगे. अगर तुम इन पदार्थों का सेवन कभी नहीं करोगे तो सैतान कभी भी तुम्हें ललचा नहीं पाएगा. चर्च के सदस्यों के रूप में हमारा बाप्तिस्मा हुआ. हमने ईसा मसीह को अपनाया और ईश्वर के आदेशों का पालन करने का वादा किया है. अगर हमसे गलती हो जाए तो चर्च हमें मौका देता है कि हम उन गलतियों को सुधार सकें और पश्चाताप कर सकें.
Including repenting and forsaking sin where mistakes have already been made.
The Lord promises. सभी जो अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत आशीर्वाद देते हैं. इस जीवन में अत्यधिक खतरा होने के कारण ईश्वर अपने बच्चों से कहते हैं, अपने लिए सावधान रहिए और अनंत जीवन के शब्दों का पालन कीजिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और हमेशा वापस चाहते हैं. इसलिए आदेश सावधान रहिए अपने लिए से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सभी चीजों से सावधान रहें, जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं और अन्य चीजें. जल्द से जल्द प्रतिज्ञा करना बहुत आवश्यक है. उदाहरण के रूप में, तुम्हें पूरी आमदनी पर टाइडिंग देने की प्रतिज्ञा अभी करनी चाहिए. टाइडिंग देने से हम कम स्वार्थी और ज्यादा अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनते हैं. वो निर्णय करना अत्यधिक आवश्यक है. टाइडिंग की तरह प्रत्येक आदेश तुम्हारी अनंत खुशियों के लिए और तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनाने के लिए है. इन बातों का निर्णय करने का समय अभी है. तुम्हें नीफाई की तरह बनना चाहिए, जिसने ईश्वर का आदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय लिया हुआ था. अब हम अन्य प्रतिज्ञाओं का सोच विचार करते हैं. आज से अगर तुम सच बोलने और हमेशा साफ भाषा बोलने का वादा करो तो कितना अच्छा होगा कि तुम हमारी अपनी भाषा हमेशा साफ रखो. ये प्रतिज्ञाएं तुम अपने अपने कमरे में ईश्वर से कर सकते हो। स्क्रिप्चर सिखाती हैं तुम विनम्र रहो और तुम्हारे ईश्वर तुम्हें हमेशा तुम्हारे को गाइड करेगा।
You would also want to make commitments regarding modesty of dress and how to act while dating. Keeping the Lord's standards is always easier when you have already determined how you will act when faced with decisions in the presence of a date, friends, or peers. Some individuals may not understand
your स्टैंडर्ड्स को न समझ सकें, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने सिद्धांतों का पालन करोगे वो तुम्हें तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा करेंगे।
Other standards to ponder and commit to are absolute moral cleanliness and sexual purity, Sabbath observance, preparation for missions,
सबत का पालन करना और अपने को मिशन और मंदिर में जाने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट हिंकली तुम सभी को प्यार करते हैं और तुम्हें इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जीवित प्रॉफिट्स को फॉलो करने से तुम्हें हमेशा खुशी मिलेगी। जैसे तुम इन सिद्धांतों को फॉलो करोगे और ईश्वर के प्रति प्रतिज्ञा करोगे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुमसे प्यार करते हैं और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए भेजा है। जैसे तुम उनसे प्रतिज्ञा करोगे उनके पुत्र ईसा मसीह के नाम में, आमेन।
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The prophet Joseph
बोलने की शक्ति के बारे को गहराई से बताया जब उन्हें सिखाया उस शब्दों से हर व्यक्ति काम करता है जब विश्वास से काम करता है भगवान ने कहा that there was light and there was light Joshua ने बोला है और उन बड़ी रोशनियों में जिसने भगवान ने बनाया था Elijah ने निर्देशन दिया और स्वर्ग 3 साल 6 महीने के लिए स्वर्ग रुक गए ताकि बारिश नहीं हुए ये सब विश्वास के द्वारा किया गया Faith then works by words. Words, its mightiest works have been and will be performed. सभी उपहारों की तरह जो ऊपर से आते हैं शब्द पवित्र हैं और उन्हें ध्यान से बोलना चाहिए आत्मा के इस्तेमाल द्वारा इस शब्दों की इस शक्ति को जानने के से हम ये बताते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं और हमारे खुद के बारे में बात कर रहे हैं एक अपोक्रिफा से एक लाइन है जो इस विषय को ढंग से बताती है मेरे जाते वो कहती है the stroke of the whip maketh marks the in the flesh but the stroke of the tongue breaketh bones मेरे दिमाग में उस चीज को देखकर मुझे बुक ऑफ जेम्स के पढ़ने के बाद में ये बहुत अच्छा लगा कि मैं एक तरह से एक निर्दोष आदमी बन सकता था जेम्स ने कहा है for in many things we offend all but if any offended not in word the same is a perfect man and able to bridle the whole body उसके बाद उन्होंने bridle उन्होंने कहा behold we put bits in the horses mouths that they may obey us and we turn about their whole body behold ships which though they may three winds yet they turn about with a small helm James ने इस चीज को भी बताया the tongue is also a little member but behold how great
a forest
a little fire can burn so is the tongue a fire among our members defile the whole body it is set on fire of hell for every kind of beasts and birds and of serpents and of things in the sea hath been tamed of mankind but the tongue can no man tame it's an unruly evil full of deadly poison therewith bless we God even the Father and therewith curse we men which are made of the similitude of God out of the same mouth proceedeth blessing and cursing my brethren he says these things ought not to be ये बहुत सीधा साधा रास्ता है पर जेम नहीं चाहता था कि हाँ हाँ हमारी जुबानें हमेशा जहर से भरी हैं पर वो बताना चाहता था कि हम कभी कभार जहरीली बातों को बोल सकते हैं और जो आवाज बयान देती है और प्रार्थना करती है और जायंस के गाने को गाती है वो दूसरों के को बुरा भी बोल सकती हैं और फिर दर्द पहुंचा सकती हैं और एक की आत्मा को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं
inflicts pain and destroys the spirit of oneself and of others in the process
out of the same mouth proceedeth be blessing and cursing James ne kaha my brethren and sisters unhone kaha these things ought not to be kya ye kuch wo hai jis pe hum sab kaam kar sakte hain kya wo ek kshetra hai jiske liye hum kuch ek kaam karke ek nirdosh aadmi aurat ban sakte hain पतियों, तुम्हें सबसे ज्यादा पवित्र उपहार दिया गया है भगवान ने। एक पत्नी जो भगवान की बेटी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, जिसने अपने तुम्हें दिया है अपने आप को प्यार से। उन अच्छी बातों को सोचो जिन्होंने तुम्हें कहा जब तुम उसे शादी करने के पहले बोल देते हैं। अपने बारे में सोचे और उनके बारे में है एक भगवान और देवी के बारे में जो तुम सच में हो। और फिर उन उस बातों को सोचो जो झगड़े और जहरीली शब्दों को इस्तेमाल किया गया, नुकसान जो भी किया सकता है। मसीह ने कहा है, not which goes in the mouth defileth the man, but that which cometh out of the mouth, this defileth the man. एक पति जो अपनी पत्नी को कभी उस मारने के बारे में सोच भी सकता था, पर वो उसकी आत्मा और दिल को तोड़ सकता है अपने गंदी और बिना सोची हुई भाषा से। शारीरिक रूप से दंड पाना और या मार लगाना द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट में बंद है। और हम सेक्सुअल अब्यूज के बारे में भी अगेंस्ट भी बोलते हैं। और उसके साथ में मैं आज वर्बल और इमोशनल अब्यूज के बारे में बोलता हूँ, और खासकर पतियों के बारे में जो वो अपनी पत्नी के ऊपर करते हैं। भाइयों, ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। उसी आत्मा में हम बहनों से भी बोलते हैं, क्योंकि वर्बल अब्यूज का जो पाप है वो कोई भी जेंडर को नहीं जानता है। पत्नियों, आपने अपने जबान को भी ऐसा करना है कि आप ढंग से यूज करोगे। आपकी इतनी प्यारी आवाज जो प्रकृति से इतनी ज्यादा स्वर्गदूतों की तरह है, और उसके साथ साथ वो इतनी ज्यादा जहरीली भी हो सकती है। एक औरत के शब्द इतने ज्यादा तीखे हो सकते हैं कि एक चाकू से भी ज्यादा वो, और वो जो उन लोगों को प्यार से होकर झगड़े की ओर ले आए। बहनों, आपकी आत्मा में ऐसी तरह की कोई भाषा के लिए कोई जरूरत नहीं है, और खासकर पीठ पीछे जो चीजें आप जो कहते हो। हमारे घर के बारे में या वार्ड या हमारे पड़ोस के बारे में ही कहा जाए, द टंगिंग इज अ फायर, अ वर्ल्ड ऑफ इनइक्विटी बर्निंग अमंग आवर मेंबर्स। क्या मैं इस राय को थोड़ा और बढ़ाकर एक परिवार के बारे में बता सकता हूँ? हमें बच्चों से बात करते समय बहुत ध्यान देना है, क्या कहें, क्या नहीं कहें, कैसे कहें। उसकी वजह से एक बच्चे के अपने आप के बारे में जो समझ है उस पर असर पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए क्योंकि उससे बच्चे का विश्वास भगवान बढ़ता है। अपनी बातों में हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहो। उन्हें कभी भी ये मत बोलो कि वो मोटे हैं या लेजी है। तुम कभी भी उसे जानबूझ करके नहीं करोगे, पर अगर वो हो गया तो वो उसे हमेशा याद रखेंगे और कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और अपने बच्चों के बीच में कंपेयर मत करो, चाहे तुम सोचो कि तुम उसकी तरह अच्छे हो। तुम कह सकते हैं कि सुजन सुंदर है और सैंड्रा दिमाग से तेज है, पर सुजन को सिर्फ ये याद रहेगा कि वो दिमाग से तेज नहीं है, और सैंड्रा को ये याद रहेगा कि वो सुंदर नहीं है। हर बच्चों को एक एक करके वो बताओ कि उस तरह से जो उनकी अच्छी खासियत है और उन्हें कभी भी ये उन्हें ये लगे नहीं कि वो एक दूसरे से कंपेयर करें और अपने आप को कभी भी पूरा नहीं समझें। इन सभी चीजों में हमें जो गलत जो सोच है उसके बारे में बोलना जो हमारे बारे में आते हैं। हम अपनी खुद की गलतियों को देखते हैं जैसे हम बोलते हैं और सोचते हैं या दूसरों के बारे में और उसके बाद में हम सभी जगहों में गलतियां ही देख रहे हैं। कोई सूरज जगह नहीं है, कोई गुलाब नहीं है, सब दूर अंधकार ही है। मैं एल्डर ऑरसन एफ विटनी के बारे जो कहा था उनसे बहुत पसंद करता हूँ। गॉस्पल की आत्मा हमेशा अच्छा चाहती है, वो भगवान में विश्वास करती है और अच्छी चीजों की ओर देखती है और उससे जो विपरीत है वो भगवान से दूर ले जाती है और आज्ञा पालन को हटाती है। मसीह के जो डेक्लरेशन था जिसमें उन्होंने कहा मसीह का डेक्लरेशन जिसमें उन्होंने कहा टू बी ऑफ गुड चीयर का पालन करो, हम उसको ज्यादा तोड़ते हैं किसी और के भी ज्यादा। हमेशा आशा के साथ बोलो, अपने अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में कभी भी कंप्लेन मत करो। कैसे दूसरे ने कहा, लोगों ने कहा है, इस संस्कृति की इस गोल्डन एज में भी कोई ने कि कहा है हर कुछ ज्यादा येलो दिखाई दे रहा है। मैंने कभी नीफाई के रस्सियों के बारे में, रॉडों के बारे में सोचा है और लेमन और लेमन जो कांस्टेंट मर्मरिंग से उसने कहा होगा हिट मी वन मोर टाइम आई कैन स्टिल हियर यू, मुझे एक बार और मारो मैं तुम्हें वापस फिर भी सुन सकता हूँ। पर जिंदगी कि मैं कई मुसीबतें हैं और उसमें कई विपरीत चीजें आती हैं, पर हमेशा एल्डर हॉरन को अपने जीवन में अपनाओ। जिंदगी में कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है कि उसके बारे में आप हमेशा बोलते रहो। पॉल ने हमें बताया है पर बड़ी आशा से उन्होंने हमसे कहा है लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ बट ओनली दैट इज व्हिच इज गुड एंड एडिफाइंग that it may minister grace unto the hearers. Not only the Spirit of God, let all bitterness and wrath, anger and clamor, evil speaking be put away from you. Be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. अपनी बहुत प्रेरणा और भावुक बयान में नीफाई हमें ने बोला है, follow the Son of God with all purpose of heart. और ये वादा दिया है, after ye have the baptism of fire of the Holy Ghost, ye can speak with the new tongue, ye with the tongue of angels. And how can you speak with the tongue of angels, save it were by the Holy Ghost? Speak by the power of the Holy Ghost. Wherefore they speak the words of Christ. मसीह थे और वो हैं शब्द या द वर्ड जो जॉन द बिलीवर ने कहा था फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ फुल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन जिनके पास में। सो भाइयों और बहनों इस अनंत रास्ते में जिसमें हम मसीह की तरह बनना चाह रहे हैं ताकि हम निर्दोष आदमी औरतें बनने की कोशिश में एक तरह में कोशिश करें, किसी को भी अपने शब्दों के द्वारा दुख नहीं पहुंचाएं या एक दूसरी तरह से एक नई जबान से बोलें। स्वर्गदूतों की जबान से हमारे शब्द हमारे कामों की तरह विश्वास और आशा और चैरिटी से भरे होने चाहिए, जो तीन बड़े क्रिश्चियन नियम हैं जिसकी आज इस जमाने में बहुत ज़रूरत है। इन शब्दों के द्वारा जो आत्मा के अनुसार बोला जाएगा, आंसुओं को सुखाया जा सकता है और दिलों को ठीक करा सकता है और जीवनों को ऊंचाइयों में पहुंचा सकता है और आशा को लौटाया जा सकता है और विश्वास को भी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे शब्द जो चाहे इस विषय के ऊपर हो वो तुम्हें विश्वास देंगे कि तुम मेरी आवाज को में सुनो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। और ये जानो कि स्वर्गीय पिता तुमसे प्यार करता है और उसके ओनली बेगॉटन बेटा भी तुमसे प्यार करता है। और वो जब तुमसे बोलते हैं और वो तुमसे बिल्कुल बोलेंगे, वो हवा में नहीं होगा, अर्थक्वेक या भूकंप में नहीं होगा, आग में नहीं होगा, पर वो एक छोटी और प्यारी सी आवाज में होगा जो नर्म है और दयावान है। वो स्वर्ग दूतों की जबान से होगा। क्या हम खुशी पाए उस सोच में कि हम इन चीजों करके को कहते हैं और करते हैं हमारे भाइयों और बहनों और छोटे बच्चों, हम उन्हें भगवान के लिए कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
My boyhood home in California.
California में मेरा बचपन का घर बड़े जर्दालू, चेरीज, आड़ू, नाशपाती और अन्य मीठे फलों के बारी बड़ी बड़ियों के करीब था। हम खीरों, टमाटरों और भिन्न शाक सब्जियों के खेतों के करीब रहते थे। जब मैं लड़का था तो हमेशा कैनिंग के समय इंतजार करता था। मुझे कैनिंग के डब्बों को साफ करना हमारे उस गर्म रसोई घर में करना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं अपने माता पिता के साथ काम करना पसंद करता था। और मैं अपने काम को खाना पसंद करता था। मैं निश्चित करता हूँ कि मैंने ज्यादा फल खाया ताकि उसमें तुलना में जितना हमारे कैनिंग डिब्बों में था। मैंने एक पीचेस के डब्बे को देखता हूँ। मूल सबक मैंने सीखा संसारिक आत्मनिर्भरता और दूरदर्शी जीवन के बारे में। जब फल टूटता और बढ़ता था उससे मुझे पूरा जीवन भर आशीर्वाद मिला। रिचिकर साधारण उस समय अनुभव बहुधा सबसे आवश्यक शिक्षण मौके प्रदान करते हैं। बालिक के रूप में मैंने उन चीजों पर विचार किया जिन्हें मैंने अपने रसोई घर में कैनिंग के समय देखा। इस सुबह मैं कुछ आध्यात्मिक सबकों को चर्चा करना चाहता हूं जिनके हम सीख सकते हैं उस प्रक्रिया से जब खीरा एक अचार बनता है। मैं आमंत्रित करता हूँ होली गोस्ट की पवित्र आत्मा हमारे साथ हो जब उन सबकों के महत्व पर सोच विचार करें जब हम तुम्हारे उन हमारे लिए जब करें। एक अचार एक खीरा है जो बदल गए एक विशेष रेसिपी और कई कार्यवाही के अनुसार। एक खीरा एक को अचार के रूप में बदलने की प्रक्रिया के पहले कार्य है तैयारी और सफाई। मुझे याद है कई घंटे बिताए जाते थे मेरे घर के पीछे वाले बरामदे में जब हम उन खीरों में से डंडी निकाली जाती थी। खीरे की तैयारी और सफाई के लिए मेरी माताजी बहुत सावधान थी। वह बहुत अच्छी तरह सफाई करती थी और हमेशा हमें कार्य देखती थी कि यह निश्चित करने के लिए कि यह आवश्यक कार्य पूरी तरह हो। अगले कार्य इस बदलने की प्रक्रिया में थे खीरों को बुडोना और भिगोना खारा पानी में काफी लंबे समय तक। खारा पानी की तैयारी के लिए मेरी माताजी हमेशा उस रेसिपी का इस्तेमाल करती थी जिसे उसने अपनी माता से सीखा था, एक रेसिपी जिसे विशेष अंश और स्पष्ट प्रक्रिया थी। खीरे तब की अचार बन सकते हैं अगर उन्हें पूरी तरह से संपूर्ण सिखाया पानी में डुबोया जाए। सुरक्षित रखने की प्रक्रिया धीरे धीरे खीरे को संयोजन को बदल देती है और एक अचार को प्रदर्शी रूप के एक विशिष्ट स्वाद दे देता है। थोड़ा खारा पानी से आवश्यक बदलाव नहीं होगा। बेशक स्थिरता काफी देर रखना और पूरी तरह डुबोना जरूरी है इच्छुक बदलाव लेने के लिए। प्रक्रिया के अंतिम कार्य के लिए जरूरी है बंद करना अचारों को उन डिब्बों में जो जीवाणु और साफ हैं। अचारों को कैनिंग डिब्बों में भरा जाता है जिन्हें खोलते गर्म खारे पानी से ढक दिया जाता है और खोलते वाटर बाथ कैनर में संसाधित किया जाता है। जब इस प्रक्रिया को उचित रूप से पालन किया जाएगा अचार रखे जा सकते हैं और उसका आनंद बहुत लंबे समय तक लिया जा सकता है। संक्षिप्त करने के लिए एक खीरा एक अचार बनता है जब उसकी तैयारी और सफाई की जाती है। खारा पानी में डुबोया और अच्छी तरह भिगोया जाता है और जीवाणु डिब्बे में बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए समय जरूरी है और इसी जल्दबाजी में नहीं की जाती है और किसी भी आवश्यक कार्य की उपलेखा नहीं की जाती। ईश्वर के अधिकार प्राप्त किए हुए उस बारंबार सिखलाते हैं कि हमारे मरणशील अस्तित्व के मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक रूप से बदलना और यीशु मसीह के प्रायश्चित द्वारा रूपांतर करना। अल्मा घोषणा करते हैं, आश्चर्यपूर्ण नहीं है कि सभी मानव जाति हैं, पुरुष और औरतें सभी देश जाति भाषाएं और फिर से जन्म लें, हाँ ईश्वर से जन्म लें, अपनी शारीरिक और गिरी हुई अवस्था से बदले धार्मिकता की अवस्था तक ईश्वर द्वारा मुक्ति पाएं, उनका पुत्र और पुत्रियां बने और इसी प्रकार से वो प्राणी बने और जब तक वो उस ऐसा नहीं करेंगे वो किसी तरह ईश्वर के रहे राज्य को हासिल नहीं करेंगे। हमें आदेश दिया गया है मसीहा में आएं और उनमें संपूर्ण हो और सभी पापों से दूर करें। मसीहा में नए प्राणी बनें, प्राकृतिक इंसान को दूर करें और अनुभव करें एक विशाल बदलाव अपने आप में या अपने दिलों में कि हमारे पास कोई स्वभाव ना हो पाप करने का पर लगातार अच्छाई करने। कृपया ध्यान दें कि इस चंदों में बदलाव विशाल है लागू नहीं। जो हम महसूस करते हैं जिसका इच्छा करते हैं उसका आध्यात्मिक जन्म और मूल बदलाव हम जो हम सोचते हैं और करते हैं और हम क्या हैं। वास्तव में यीशु मसीह के समाचार का वास्तविक स्वभाव आवश्यक रूप से एक मूल और स्थायी बदलाव लाते हुए हमारे स्वभाव में जो संभव है। पवित्र मसीहों को विशिष्टताओं और दया और महिमा पर हमारा विश्वास द्वारा जब हम मसीहा का मार्ग अपने चुनते हैं हम बदलाव के लिए चुनते हैं आध्यात्मिक रूप से पुनः जन्म लेना। जैसे एक खीरा और अचार में बदलने से पहले उसकी तैयारी और सफाई की जाती है उसी तरह तुम और मैं तैयार हो सकते हैं विश्वास के शब्दों और अच्छे धर्म सिद्धांत के साथ और प्रारंभिक वादाओं द्वारा साफ हो सकते हैं जिनका प्रबंध एरोनिक पुरोहिती के अधिकार द्वारा होता है और लागू पुरोहिती निरंतर चलती है जो पुरोहिती के पास फरिश्तों के प्रचार और प्रारंभिक सुसमाचार की चाबी है। कौन सुसमाचार? पश्चाताप और बैप्टिज्म और पापों की माफी का सुसमाचार है और ईश्वर ने सफाई का उन्हें स्थापित किया। इसलिए उसे अपने बच्चों को सिखाया है कि सभी मानव को सभी जगह पश्चाताप करना है। वो किसी भी तरह ईश्वर के राज्य को हासिल नहीं करेंगे क्योंकि कोई अपवित्र चीज वहाँ नहीं रह सकती है या उसका उपस्थिति में नहीं रह सकते हैं। उचित तैयारी और तब सफाई फिर से पैदा होने की प्रक्रिया का प्रथम कार्य है। जैसे एक खीरा को एक अचार के रूप में बदला जाता है जब उसका खारा पानी में डुबोया और अच्छी तरह भिगोया जाता है ताकि फिर से पैदा हो सकें जैसा हम यीशु मसीह के सुसमाचार द्वारा और उसमें तल्लीन होते हैं। जब हम वादों का पालन और सम्मान करते हैं जिसमें हम प्रवेश कर चुके होते हैं, जब हम मसीहा के शब्दों का पालन करते हैं, जब हम पिता से अपने पूरे दिल की शक्ति से प्रार्थना करते हैं, और जब हम ईश्वर को अपने पूरे दिल मन की शक्ति से करते हैं, क्योंकि जो वादा तुमने किया है तुम मसीहा के बच्चे कहलाओगे, उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां। देखी इस दिन उन्होंने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से अपनाया, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारा दिल बदल चुके हैं और उनके नाम पर विश्वास द्वारा, इसलिए तुम उनके द्वारा पैदा हुए हो और उनके पुत्र और पुत्रियां बन गए। आध्यात्मिक पुनर्जन्म, जिसका वर्णन इस चंद में किया गया है कि वो प्रतीतमात्मक रूप से जल्द ही एक बार में नहीं होता है, वो एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है, एकमात्र घटना नहीं। Our motives, our thoughts, our words, and our deeds become aligned with the will of God. हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म ईश्वर की इच्छाई के अनुसार हो जाते हैं। इस बदलाव प्रक्रिया की अवस्था में समय, दृष्टि और धैर्य की जरूरत है। एक खीरा तब ही सिर्फ एक अचार बनता है जब खारा पानी में स्थिरता अच्छी तरह रखकर और पूरी तरह से डुबो जाता है। महत्वपूर्ण रूप से इस रेसिपी में नमक मुख्य अंश है। नमक के कई बार प्रयोग किया गया धर्म सिद्धांत धर्मशास्त्रों में दोनों एक वादे और वादे के लोगों का चिन्ह के लिए, और जैसे नमक आवश्यक है खीरा को एक अचार में बदलने के लिए, उसी तरह वादे केंद्रीय है हमारे आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए। हम मसीहा पर विश्वास का अभ्यास अपने पापों के पश्चाताप द्वारा और पापों की माफी के लिए किसी एक द्वारा डुबोने से बैप्टिस्म लेकर जिसके पास पुरोहिती अधिकार हो, हम फिर से पैदा होते हैं। इसी प्रकार हम मौत तक बैप्टिस्म द्वारा उनके साथ दफन हैं, जैसा मौत से मसीहा जी उठे, और पिता की महिमा द्वारा उसी तरह हम भी जीवन की नवीनता में चलेंगे। और जब बैप्टिज्म के पानी से बाहर आ जाते हैं, हमारी आत्माओं को लगातार उदारकता के सुसमाचार की सच्चाई और रोशनी के साथ डूबी और भीगी होनी चाहिए। मसीहा एक धर्म सिद्धांत को अनियमित रूप से और थोड़ा ग्रहण करने से, उनकी पुनर्स्थापित गिरजा में आंशिक भाग लेने से आध्यात्मिक बदलाव नहीं आ सकते हैं जो हमें जीवन के नवीनता में चलने में समर्थ है। निश्चय ही वादों के प्रति वफादारी, लगातार वचनबद्ध रहना और ईश्वर के लिए अपनी पूरी आत्मा भेंट करना जरूरी है अगर हमें अनंतकार से आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। तुम्हें मसीहा में आना चाहिए जो इज़राइल के पवित्र प्रभु हैं, और उनकी मुक्ति और उनके उद्धार की शक्ति से बागी बनिए। हाँ, उनमें आइए और अपनी पूरी आत्मा दीजिए उन्हें भेंट के रूप में, और उपवास और प्रार्थना लगातार करते रहिए और अंत तक सहनशील रहिए, और जैसे प्रभु जीवित हैं तब भी बचोगे। उदारता से सुसमाचार में पूरी तरह से डूबना और भीगना फिर से पैदा होने की प्रक्रिया के आवश्यक कार्य हैं। सुरक्षित खीरों को जीवाहून डिब्बों में भरे जाते हैं और खौलते पानी में रखे जाते हैं ताकि अशुद्धता निकाली जा सके, और बाहरी संदूषणाओं से डिब्बों के बंद किया जा सके। उसी तरह से जब तुम्हारी और हमारी दुलाई मेमने के लहू से हो जाती है, फिर पैदा होते हैं और धर्म विज्ञान प्राप्त करते हैं और उन वादों के सामने करते हैं जिनका प्रबंध मेलकिसेदेक पुरोहिती की अधिकार द्वारा होता है। फिर भी उन्होंने बहुधा उपवास और प्रार्थना किया और अधिक विनम्र हुए। मसीहा के विश्वास पर उन्हें और भी स्थिर, अपनी आत्मा को आनंद और सांत्वना से भरा, हाँ अपने दिलों को शुद्ध और पवित्र किया, जो पवित्र आती है क्योंकि उनके दिल ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। बंद करना शब्द आज मेरे संदेश में सिर्फ अनंत विद्वान की धर्म विधि के संदर्भ में नहीं है, जिसकी पूर्ति ईश्वर के घर में हो जाती है। निश्चय ही मैं उस विशेष शब्द के इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे धर्म सिद्धांत और वादे के 76वें भाग में समझाया गया है। ये मसीहा के सुसमाचार की गवाही ही जो उन्हें संबंधित है, जो आएगी न्यायप्री के पुनर्जीवन में। वो हैं जिन्होंने यीशु के गवाही प्राप्त की और उनके नाम पर विश्वास किया और उन्हीं के तरह बैप्टिज्म लिया जैसे उन्होंने डुबोया गया था। उनके नाम से उन्होंने पानी में डुबोया गया और ये उस आदेश के अनुसार जिसे उन्होंने दिया था। आदेशों का पालन करने द्वारा वो शायद पवित्र और साफ हो अपने सभी पापों से और उनके हाथों के रखने द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करने जिन्हें इस शक्ति द्वारा नियुक्त और सील किया गया हो और जो विश्वास द्वारा अभिभूत करते हैं और वादे की पवित्र आत्मा द्वारा सील होते हैं जिसे पिता भेजते हैं उन पर जो न्यायप्रिय और वफादार हों। वादे की पवित्र आत्मा अनुसमर्थन शक्ति है पवित्र आत्मा की। जब वादे की पवित्र आत्मा द्वारा सील होते हैं, एक धर्म विधि वचन या वादा पृथ्वी और स्वर्ग पे बंधे हुए हैं। पवित्र आत्मा से इस स्वीकृति को प्राप्त करना सुसमाचार वादों के सम्मान करने की वफादारी, सत्यनिष्ठा और स्थिरता के परिणाम है समय की प्रक्रिया में। फिर भी इस सीलिंग अन्य और पाप द्वारा जब्त किया जा सकता है। वादे की पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र और सील करने में सम्मिलित है फिर से पैदा होने की प्रक्रिया के चरम बिंदु कार्य।
My beloved brothers and sisters, I pray this parable of the pickle.
मैं प्रार्थना करता हूँ अचार की निखट्टा हमें मदद करेगी आध्यात्मिक पुनर्जन्म के अनंत महत्व को समझने में। अल्मा के साथ मैं अपनी आत्मा की कार्यशेष्टि को कहता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि व्यस्तता का जिसके लिए मैं नियुक्त किया गया हूँ, हाँ अपने परम प्रिय वार्ताओं को प्रचार करने के लिए, हाँ और प्रत्येक जो भूमि पर है, हाँ सभी को प्रचार करने के, दोनों बूढ़े और जवान, दोनों बूढ़ी और मुक्त, हाँ मैं तुम बूढ़ों से कहता हूँ और उन अडेढ़ हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए उनसे कहता हूँ वो पश्चाताप करें और फिर पैदा हों। मैं जीवित उदारता की वास्तविकता और देवत्व की गवाही देता हूँ जो हमें आमंत्रित करते हैं उनके पास जाएं और बदलाव लाएं। मैं गवाही देता हूँ कि उनके गिरजाघर और पुरोहिती अधिकारी की पुनर्स्थापना भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा हुई। मसीहा पर विश्वास द्वारा हम आध्यात्मिक रूप से तैयार रह सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं, उन सुसमाचार को अपने और ग्रहण कर सकते हैं और वादे की पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र और सील हो सकते हैं, फिर से पैदा हो सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
We are grateful to the Tabernacle Choir.
हम Tabernacle Choir को इस सुबह के सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद देते हैं. President Hinckley ने अब मुझे बोलने को कहा है. उनके बोलने हमें बोलने के बाद इस सेशन का अंत choir करेंगे. Come thou font of every blessing, गाकर Elder Paul E. Coyle का 70 के फिर प्रार्थना करेंगे. और कॉन्फ्रेंस को इस दोपहर के 2 बजे तक रोका जाएगा.
Recently, I was looking through some family. हाल ही में कुछ फैमिली की फोटो एल्बम में देख रहा हूँ. मुझे कोई यादें मेरे दिमाग में आए, जैसे मैंने अपने प्यारों वालों को देखा बर्थडे के ऊपर, यूनियन पे, एनिवर्सरी पर. जब इन चित्रों को लिया गया था, मेरे कई परिवार के साथ के बाद इस दुनिया से चल बसे हैं. मुझे भगवान के उस शब्दों को याद आया, Thou shalt live together in love, in so much that thou shalt weep for the loss of them that die. मैं उनमें से हर किसी को बहुत याद करता हूँ जो हमारे परिवार से जा चुके हैं. वो काफी मुश्किल और दर्द भरा होता है, पर मृत्यु इस जीवन का एक भाग, पक्का भाग है. हमने ये यात्रा चालू करी है कि हम प्री मॉर्टल जीवन से यहाँ आए. वर्ड्सवर्थ ने इन शब्दों को अपनी ओड टू इमॉर्टैलिटी की पोयम में लिखा है. हमारा जन्म सिर्फ एक नींद से उठने का है. आत्मा हमारे साथ में उठती है और उसके बाद में वो काफी दूर आए हैं और वो पूरी तरह से भूली नहीं है, पर वो पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने भगवान के से जो हमारा घर है. जीवन आगे चलते जाता है. बचपन के बाद जवानी आती है, उसके बाद में हम बड़े होते हैं, उसके बाद में हम जीवन के मतलब को समझते हैं. वो सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अनंत जीवन का प्रश्न. इन प्रश्नों के द्वारा हमें अपने प्यारे लोगों के बारे में ध्यान आता है जब हमारा समय करीब आता है. इन समय में हम जोब के प्रश्नों को याद करते हैं, If a man dies, shall he live again? आज की तरह कई लोगों ने भगवान के शब्द को चुनौती दी है और उसे नहीं माने, और हर किसी को ये देखना है कि वो किसको सुनेंगे. क्लैंसर, जो वो एग्नोस्टिक थे, डिक्लेयर डोम लाइफ इज मच वैल्यू एंड नो दैट इज मच लॉस. शोपेनहावर, द जर्मन फिलोसोफर, और जो पेसिमिस्ट थे, उन्होंने कहा था अनंत जीवन को चाहना एक अनंत गलती को चाहना है. और कई तरह नए लोग आए हैं जिन्होंने मसीह को सूली पर चढ़ा है और उनकी दिव्यता को के बारे में पक्के से नहीं मानते हैं. रॉबर्ट ब्लैचफील्ड ने किताब गॉड और माय नेबर ने कृष्णों के विश्वास में जैसे भगवान क्राइस्ट मसीह और मोर्टैलिटी के को हमला किया. उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कि कोई भी क्रिश्चियन चाहे कितना भी बड़ा हो और मेरे केस को गलत नहीं बता सकता है. उन्होंने अपने आप एक बहुत बड़ी दीवार को खड़ा करा जो दीवार थी असमझ की थी, पर उसमें एक अनजानी एक चीज जल्द से हुई और उसके बाद में वो दीवार एकदम गिर गई. फिर उसने बाद में धीरे धीरे उसने जाना तैयार किया उस विश्वास को जिसको उन्होंने ठिकराया था और मजाक उड़ाया था. ये किस वजह से क्योंकि उनके पत्नी का देहांत हुआ. एक टूटे हुए दिल से वो उस कमरे में गए जहां उसके सारे इस जीवन की सी जगह थी. उन्होंने उनके उस चेहरे को देखा जिससे वो प्यार करते थे. उन्होंने उनके दोस्त के इसके वो हैं पर नहीं है, सब कुछ बदल गया है, वो मुझसे चली गई है, अगर कुछ भी नहीं बचा है,
अगर पर कुछ भी नहीं बचा होता अगर सिर्फ उसकी आत्मा नहीं होती। बाद में उसने लिखा, मृत्यु वो नहीं है जो लोग सोचते रहते हैं, वो एक दूसरे एक कमरे में जाने की तरह है। उस कमरे में हम उन लोगों को, औरतों को और बच्चों को पाएंगे जिन्होंने हमेशा प्यार किया है और खो दिया है। मसीह की दिव्यता के बारे में आज लोग नहीं मानते हैं। वो लोग हमेशा एक आंखों से देखा हुआ बयान को मांगते हैं। स्टीवन जो बिब्लिकल टाइम्स में से उन्हें एक शहीद की एक मौत का सामना करने पर उन्होंने स्वर्ग को देख के बोला और कहा, आई सी द हेवन ओपन द सन ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड। पॉल जो कोरिंथ पे थे उनके बयान से बड़ी कौन सी बढ़िया हो सकती है। उन्होंने कहा, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and was seen of Cephas, then of the 12, and uske baad Paul ne kaha, all last all he was seen of me. हमारे इस डिस्पेंसेशन में उस बयान को दिया गया है प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ ने, जब उन्होंने सिडनी रिग्नम एक साथ ने बयान दिया, आफ्टर मेनी टेस्टिमोनीज व्हिच हैव बीन गिवन ऑफ हिम, दिस इज द टेस्टिमोनी लास्ट ऑफ ऑल व्हिच वी गिव ऑफ हिम दैट ही लिव्स। ये वो ज्ञान है जो हमेशा रहता है, ये जो सत्य है जो हमें सहायता देता है, ये जो विश्वास है जो जिनके दिल में दुख है ताकि वो अंधकार से रोशनी में आए। क्रिसमस की रात की पहले 1997 मैंने में एक परिवार से मिला। उस परिवार के हर सदस्य में एक पक्का बयान था सत्य के बारे में और विस्थापन और पुनर्जीवन के बारे में भी। परिवार में एक पिता और माता और चार बच्चे थे। हर बच्चे, तीन बच्चे और एक बेटी को एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी की एक बीमारी थी और हर कोई हैंडीकैप था। मार्क जो समय 16 साल का था, वो उसने एक स्पाइनल सर्जरी में ताकि वो और चल सके, और दूसरे जो लड़के थे क्रिस्टोफर 13 और जेसन 10 कैलिफोर्निया जाने वाले थे ताकि वो उसी तरह की सर्जरी को पा सके। उनकी अकेली डॉटर शैना जो 5 साल की थी वो एक सुंदर बच्ची थी। सारे बच्चे बहुत ही समझदार और विश्वास से भरे थे और उनके दिख सकता था कि उनके माता पिता बिल और शेरी वो उनके बहुत गर्व मानते थे। हम थोड़ी देर के लिए मिले और उसके बाद में उस परिवार की खास आत्मा ने मेरे ऑफिस को भर दिया। पिता और मैंने एक दूसरे को दो बालकों को आशीर्वाद दिया जो सर्जरी करवाने वाले थे, और फिर माता पिता ने पूछा कि शैना हमारे साथ मेरे सामने गा सकते थे। उनके पिता ने बोला कि उन्होंने उनके फेफड़ों में या लंग में कम ताकत थी और उसका गाना बहुत मुश्किल था, पर वो कोशिश करना चाहती थी। तो उसने एक कैसेट के साथ ने एक साफ और सुंदर आवाज के साथ एक नोट को भी मिस नहीं करते उन्होंने एक अच्छे आने वाले समय के बारे में गाया, एक सुंदर दिन जिसके बारे में मैं सपना देखते हैं इन दुनिया में, जिसको मैं देखना चाहता हूँ, एक सुंदर जगह है जहाँ सूरज आता है और चमकता है आकाश में। इस सर्दी की सुबह में अगर मेरी सपना सच हो जाए तो ये अच्छा सुंदर दिन जिसके बारे में सपना देते हैं वो हम यहाँ आएगा और हमेशा के लिए। हमारे सब की जो भावनाएं हैं वो आतुर हुई जैसे उन्हें वो खत्म हुई। मैं उस परिवार के साथ में रहा जब उनके सबसे बड़े मार्क 19 साल का हुआ, अरेंजमेंट करे गए ताकि वो एक खास मिशन को चर्च हेडक्वार्टर्स में कर सके। फिर उसके बाद में दोनों भाइयों ने भी ऐसे मिशनों को पूरा किया। एक साल बाद क्रिस्टोफर जो 22 साल का था, उस बीमारी के वजह से पीड़ित हुआ जो हर बच्चों को था,
फिर आखिरी सितंबर मैंने सुना कि शैना जो 14 साल की है वो चल बसी है. फ्यूनरल के समय शैना को कई लोगों ने अच्छी बातों से सम्मानित किया. हर भाई ने मार्क और जेसन ने एक भावुक परिवार के अनुभव को बताया. शैना के पिता और दादा ने काफी भावुक व्याख्या दी. उनके दिलों टूट गए थे पर उन्होंने सब ने एक शक्तिशाली और भावुक पुनर्जीवन की सच्चाई के बारे में दिया. शैनन जीती है, उसका भाई क्रिस्टोफर, और वो अपने परिवार के साथ में रियूनियन की इंतजार करते हैं. जब ये मेरा समय है आया तब मैंने उस ऑफिस के समय में हमारे विजिट को सोचा और उस प्यारे गाने को जिसे शैनन ने गाया था उस समय मैंने सोचा, क्योंकि मसीह हमारे लिए कैलवरी पर अपनी जान दिए हैं, उसकी वजह से मृत्यु के ऊपर हमारे पर कोई पकड़ नहीं है. शैनन जीती है, हमेशा रहेगी. और उस क्रिसमस की ईव 1997 में उसने एक गाना गाया उस दिन के बारे में, उस सपने के बारे में जो यहाँ है हमेशा के लिए. मेरे भाई और बहनों, हम हंसते हैं, मराते हैं, हम खेलते हैं, प्यार करते हैं और जीते हैं और फिर उसके बाद में हम मरते हैं. मृत्यु इज हमारे जीवन का भाग है. हमें सबको इन दरवाजों से जाना है. मृत्यु जो बूढ़े हैं और जो बीमार हैं उन सबको लेते हैं. छोटे बच्चे भी इसकी पकड़ से बाज नहीं. अपोस्टल पॉल ने कहा है, इट इज अपॉइंटेड अनटू मेन वंस टू डाई एंड डेड वी वुड बी,
बट फॉर वन मैन एंड हिज मिशन इवन
जीसस क्राइस्ट दैट बोर्न इन अ स्टेबल क्रेडल इन अ मैनेजर. उनके जन्म ने उन लोगों को बताया जो कई प्रॉफिटों ने बताया. उन्होंने उच्च स्थान से पढ़ाया, उन्होंने हमें जीवन दिया, रोशनी दी और रास्ता दिखाया. कईयों ने उसका रास्ते को अमल किया, बच्चों ने उसे प्यार किया और घमंडियों ने उसे ठकराया. उन्होंने पैराबल से बात करना, उन्होंने मिसाल से सिखाया और उन्होंने एक निर्दोष जीवन जिया. राजाओं के राजा और भगवानों के भगवान आ गए थे. उन्होंने कई के बारे में एक द्रोही के रूप में, एक दुश्मन के रूप में ट्रीट किया गया. उनके बाद में उन्होंने कुछ का लोगों ने कहा, क्रूसिफाई हिम से हवा भर गई. उसके बाद में उन्हें कैलवरी हिल पे ले जाया गया, उनका मजाक बनाया गया और फिर लोगों ने कहा, लेट क्राइस्ट द किंग ऑफ इज़राइल डिसेंड नाउ फ्रॉम द क्रॉस दैट वी मे सी एंड बिलीव. ही से ब्रदर्स हिमसेल्फ ही कैन नॉट सेव. उनका जवाब था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू. इनटू थाय हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट एंड हैविंग सेड दिस He of the host. उनकी शरीर को रखा गया एक सेपल्चर में जो पत्थर से भरा था. हफ्ते के पहले दिन मैरी मैगडलिन और उनके सेपल्चर के पास में गए. उन्हें ये देखा कि उनकी शरीर गायब हो चुका है. लूक ने हिसाब रखा है कि कहा है उन लोगों दो लोगों के बारे में लिखा था जिन्होंने कहा, Why seek the living among the dead? He's not there, but is risen. अगले हफ्ते क्रिश्चियन दुनिया सबसे महत्वपूर्ण चीज को इतिहास के मनाएगी. वो है, He's not there, but he's risen. सबसे पहला एक बयान था हमारे मसीह और भगवान के पुनर्जीवन के बारे में. उस पहली ईस्टर की सुबह जब खाली टूम को पाया गया तब उसने हमें भरोसा दिया और जवाब दिया जोब के विश्वास को प्रश्न को इफ अ मैन डाइज शैल ही लिव अगेन उन सब जिन्होंने अपने प्यारों को मृत्यु से गवाया है हम जोब का जवाब देते हैं अगर इफ अ मैन डाइज ही शैल लिव अगेन हम जानते हैं क्योंकि हमें पूरा सत्य पता है आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ भगवान ने कहा है ही दैट बिलीवथ इन मी दो ही वर डेड येट शैल ही लिव एंड हूसोएवर लिवथ एंड बिलीवथ इन मी शैल नेवर डाई सालों और मुसीबतों से और दिल के दर्दों और अकेलेपन से जब हम अपने प्यारे लोगों को मृत्यु से गवा देते हैं हमेशा विश्वास रहे हैं कि जीवन हमेशा अनंत है हमारे मसीह ने हमेशा ये जीता बयान दिया है कि वो ऐसा है मेरे पूरे दिल और मेरी आत्मा के अंदर से मैं अपनी बयान देता हूँ एक बयान देता हूँ कि भगवान जीता है मसीह उनके बेटे हैं उनके अकेले बिगाड़न बेटे हैं वो हमारे मसीहा हैं और वो हमारे पिता से बात करने वाले हैं वो क्रॉस के ऊपर उन्होंने अपनी जान दी ताकि वो हमारे पापों को भर सकें वो पुनर्जीवन के पहले फल बने क्योंकि वो जी मरे उसकी वजह से हम जिएंगे I know that my Redeemer lives. मुझसे मुझ बहुत आनंद मिलता है मैं चाहता हूँ कि पूरा दुनिया से जाने और उससे उस ज्ञान के अनुसार जिए मैं नम्र प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में जो हमारे मसीह हैं और हमारे भगवान हैं Amen.
Call for songs. Holy Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता,
we humbly express our love unto thee.
हम नम्र रूप से आपको लिए आभार जताते हैं
of prayer and instruction and testimony.
जो निर्देश देते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं जो इस गिरजे को नेतृत्व देते हैं और आपको प्यार देते हैं और यीशु मसीह के लिए भी. आमीन.
This is the 177th
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints का 177th General Conference है.